بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1982 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ قاف کی آیت 36 سے ہو رہا ہے، 50/36. سابقہ درس میں جسے کہا جاتا ہے مکہ کا بند، آخری آیت، وہ ایسے وقت میں آئی کہ وقت بہت تھوڑا تھا اور وہ آیت بڑی کشاد کی متقاضی تھی، وقت نہیں مل سکا. چند الفاظ اس کے متعلق عرض کروں. وہ آیت ایسی نہیں ہے کہ اس سے یوں ہی گزر جائے انسان، بڑی عظیم آیت. اس میں مقام مومن بتایا گیا ہے کہ ہے کیا. مشیت عزی یا مشیت خداوندی، یا یہ کہ ما یشاء جسے کہتے ہیں، یفعل ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے اس کی مشیت کہتے ہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اس نے مختص یہ چیز اپنے لیے رکھی ہے، خدا ہی کے لیے ہے یہ چیز. لیکن یہاں مقام مومن یہ بتایا گیا ہے، مومنین کے متعلق یہ کہا ہے کہ لہم ما یشاؤون فیہا. جنتی زندگی تو مومن کی ہوتی ہے، تو مومنین کے متعلق ما یشاؤون، جو ما یشاء خدا نے اپنے لیے رکھا تھا، وہ مومنین کے متعلق ہے کہ اس میں جو یہ چاہیں گے ہوگا. تو آپ سوچئے، کوئی یہ چھوٹا مقام نہیں ہے. کتنا عرفہ مقام ہے، کتنا عظیم مقام ہے جو مومنین کو دیا جا رہا ہے کہ ما یشاء، جو خدا کی صفت مخصوص تھی، وہ شریک کیا جا رہا ہے. لہم ما یشاؤون. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا، وہ اس لیے کہ یہ جو دوسرے مقامات پہ کہا ہے کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، 76/30، یہ ان مومنین نے اپنے آپ کو خدا کی مشیت میں ایسے ڈھال لیا ہوگا کہ وہ چاہیں گے ہی وہی کہ جو خدا چاہتا ہے. کیا بات ہے سر، یوں دونوں میں ہم آہنگی اور یک رنگی پیدا ہو گئی کہ وہ مشیت جو خاصہ خداوندی تھا، اس میں انہیں شریک کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی مشیت، مشیت خداوندی سے ہم آہنگ ہو چکی ہوئی. یہ جو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہا جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں یہ قوانین خداوندی سے، مشیت خداوندی سے. ان کے دل کا تقاضا، ان کا چاہنا، ان کی خواہشات، ان کی آرزوئیں، ان کے مطلوب، ان کے مقصود، سارے وہ ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہو. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس وقت ان کے لیے کہا گیا کہ لہم ما یشاؤون. ان کی مشیت اپنی بتا دی گئی ہے، خدا کی مشیت کے علاوہ. تو میں نے جیسا عرض کیا ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، بڑی عظیم کیفیت ہے جو بتائی گئی ہے. اور پھر اگلی بات جو تھی اس میں، وہ تو اس سے بھی بہت آگے لے جاتی ہے کہ لہم ما یشاؤون، وہ تو یہ ہے کہ جو کچھ یہ چاہیں گے اپنے لیے، جو ان کی آرزوئیں ہوں گی، جو ان کی خواہشات، مطالبات ہوں گے، تقاضے ہوں گے، وہ پورے کیے جائیں گے. ولدائنا مزید، اور ہمارے ہاں تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات وہ خدا ہی یہ کہہ سکتا تھا، ورنہ کوئی دوسرا ہی کہہ نہیں سکتا کہ بھئی جو تم چاہو گے وہ تمہیں یہاں ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا. اس سے آگے تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کسی زبان میں گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کے بعد جو تم مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اور اس کے بعد ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے. یہ اس سے بھی زیادہ، یہ بڑی اہم چیز ہے माज शाउन में तो इनकी सारी आरजुएं आ गईं। कहा कि इनकी जो मौजूदा सतह है, जिंदगी है, उनकी आरजुओं के पैमाने ही बड़े महदूद से हैं। वो उन्हीं के मुताबिक कुछ चाहेंगे और मांगेंगे ना, उनके मुताबिक तो मिल जाएगा। जैसा मैंने कहा था कि बच्चे को ले जाइए बाजार, वो खिलौना मांगता है, मिट्टी का घोड़ा मांगता है, टीन की मोटर मांगता है, उसका मुतालबा पूरा हो जाता है। माज शाउन में तो पूरी बात हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि बेटा जरा बड़े हो जाओगे ना, लदैना मजीद, हमारे पास इस टीन की मोटर से बुलंद भी कोई शय है, तुम्हें वो लेके देंगे हम। तो उस वक्त इसके जो पैमाने हैं, इसकी मांग के, इसकी आरजुओं के, ये पैमाने वसी तर हो जाएंगे, और ये जो इस पैमानों के मुताबिक इन्होंने खुद मांगा होगा, वो खुद उन पैमानों से कम रह जाएगा। वो कहा कि ये बात नहीं कि फिर हम कहें कि जो तुमने मांगा था वो कुछ तो हमने तुम्हें दे दिया, तो अब अगर वो इस वक्त के पैमानों के मुताबिक पूरा नहीं उतरता तो हमें क्या दोष देते हो तुम, तुमने तो मांगा ही यही था, तुमने चाहा ही यही था। कहा नहीं, कोई बात नहीं है, हम जानते हैं कि इनका इस सतह जिंदगी के ऊपर चाहना कितना महदूद है, और जब इर्तकाई मंजिल तय करती हुई जिंदगी आगे पहुंचेगी, जिसे कि हम जन्नत की जिंदगी करते हैं, तो उस वक्त इनके पैमाने और बढ़ जाएंगे। मौजूदा जो मुतालबात पूरे हुए हैं वो उन पैमानों पे मुमकिन आधों तक भी ना रहे, पौने तक भी रहे, कोई बात नहीं। कहा हमारे पास बहुत कुछ है, पैमाने वसी करते चले जाओ और हम उनमें वसतें पैदा करते चले जाएंगे। मकाम मोमिन अजीजा ने मन, हमें क्या पता है, अल्फाज हैं कुछ जिनको हम दोहरा लेते हैं। खुद मोमिन होना तो एक तरफ, जिंदगी में तो मोमिन कोई नजर भी ना आया। वला दैना मजीद, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं कहना हूं ना कि खुदा बनना तो जचदा ये नू है, यही खुदा हो सकता। मैंने अर्ज किया था अजीजा ने मन, मजहब की भी और फलसफे की भी दुनिया भर का जितना भी लिटरेचर मयसर आ सकता था देखा, ये बात कहीं मुझे नजर नहीं आई कि एक तो ये कि इनकी मशीयत को ये कहा जाए कि इनकी अपनी मशीयत है, मशीयत खुदाबंदी से अलग, मोमिन की अपनी मशीयत, और उसके बाद ये कि हमारे यहाँ तो उससे भी ज्यादा है, जो कोई ये चाहेंगे, जो कोई ये मांगेंगे, मुझे कहीं और नजर नहीं आया। ला रैब ये खुदा ही कह सकता था, किसी इंसान के जहन में ये बात नहीं आ सकती थी। वो इंतहा यही हो सकता था कि ठीक है भाई, जो मांगोगे मिल जाएगा, जो चाहोगे हो जाएगा। वला दैना मजीद, अब ये टकराव चला आ रहा था पीछे से, एक तरफ वो थे जो कवानीन खुदाबंदी से सरकशी बरतते थे, उनके मुतल्लक बताया गया था कि उनकी कैफियत क्या है, दूसरे ये थे जो उससे हम आहंगी इख्तियार किए हुए थे, जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया था उस कालिब के अंदर, उनकी कैफियत ये थी। अब कुरान का अंदाज, वो अपने दावे की के सबूत में पहले तो वो फितरत के कवानीन से दलाइल लाता है, जो शुरू में इस आयत से भी, इस सूरत से भी वो आ गया, वो बादलों से और जमीन से और हवाओं से और इनसे वो बताया गया कि किस तरह से ये खुदा के मुकर्रर करदा कवानीन के ताबे चलते हैं और किस तरह फिर जिंदगी में नई नई नमूद होती चली जाती है। उसके खिलाफ जाने वालों के मुतल्लिक कुरान का दूसरा अंदाज ये है कि वो तारीख से शहादतें पेश करता है कि तुम देखो जिन अकवाम ने हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी की उनका अंजाम क्या हुआ। वो मैंने अर्ज किया था कि माशरा या कौम अफराद ही का मजमूआ होते हैं, वो अफराद से बहुत कम बात करता है, वो निजाम से बात करता है, माशरे से बात करता है, उस कौम से बात करके मुतल्लक बात करता है जिसके मजमूए का नाम, ये अफराद जिस कौम के मजमूए का नाम होती है। अफराद बिगड़े कौम बिगड़ती है, कौम या निजाम बिगड़ा हुआ हो अफराद बिगड़े हुए होते हैं। ये अजीब किस्म का एक साइक्लिक ऑर्डर जिसे कहते हैं, एक चक्कर होता है। तो कौमों का जिक्र करता है कि पहली कौमों को देखो कि उनका हशर क्या हुआ, उसके माने ये है कि वो ज्यादा अहमियत निजाम को देता है। अच्छे निजाम में बुरे इंसान भी अच्छे बन जाते हैं, और गलत निजाम हो तो उसमें तो मजबूरन अच्छों को भी बुरा बनना पड़ जाता है। निजाम और माशरे का अंदाज बड़ी चीज है और कुरान इसी पे जोर देता है, इसीलिए कहता है कि वकाम अहलकना कबलहुम मिन करनिन हुम अशद्द मिनहुम बतशन फनक्कबु फिल बिलाद हल मिन महीस। अजीजा ने मन अदबी एतबार से भी कुरान का ये इजाज है जिस अंदाज से बात करता है, दो दो लफ्ज होते हैं इसके, एक दुनिया समोई हुई होती, कहा कि इससे इनसे पेशतर भी बड़ी बड़ी कौमें थी, इनसे कहीं ज्यादा कुव्वत और सरवत और दौलत और हशमत और इकतदार में ज्यादा बड़ी हुई कौमें, और वो इनसे कहता है कि तुम सुबह शाम उनकी उजड़ी हुई बस्तियों के खंडरात पे से गुजरते हो, उन खंडरात की ठीकरियों पे पढ़ो कि उनका अंजाम क्या हुआ और क्यों हुआ, उनकी दास्तानें उन ठीकरियों पे लिखी हुई हैं। बड़ा अंदाज है कुरान का, कहता है इनसे कहीं ज्यादा कुव्वत और हशमत में बड़ी हुई कौमें थी, उनके जहन में भी नहीं आ सकता था कि हम पे भी कोई मुसीबत आई आएगी। कहा कि जब वो उनके उस गलत निजाम के अंजाम का वक्त आया और वो तबाही आई, अंदाजा लगाई अजीजा ने मन किन अल्फाज में बात कर रहा है, लफ्ज शायरी तो हम कह नहीं सकते खुद कि है नहीं, लेकिन बलीग तरीन भी जो शायरी हो सकती है ये उससे भी ऊंची बात है। कहा कि जब ये बात आई उन्होंने छान मारा दुनिया की बस्तियों को कि कहीं पनाह मिले और कहीं पनाह ना मिली, क्या बात है, छान मारा, अपने यहां वाली बात नहीं, सारी दुनिया में बस्तियों को छान मारा कि कहीं पनाह मिल जाए, कहीं पनाह ना मिल सकी। आप देखते हैं फिर कि हिलाकत ये किस अंदाज की है, कि वहीं की बात नहीं है, बड़ी बड़े दूसरी दौलतों से, दूसरी सल्तनतों से भी इनके मुआहदे होंगे, इनके ताल्लुकात होंगे, और कबाइल होंगे, बरादरियां भी होंगी, बस्तियां भी और होंगी, होती हैं, और जब ये दौलत और अशमत में इतने ऊंचे थे तो इनके ताल्लुकात भी इतने होंगे, लेकिन जब तबाही आती है तो उस वक्त कैफियत ये है ये कि इन्होंने छान मारा दुनिया की बस्तियों को कि कहीं तो पनाह मिल जाए और कहीं पनाह नहीं मिली उनकी। और हमें तो अरीजा ने मन कहीं दूर इन उजड़ी हुई खंडरात की ठीकरियों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमारे दौर में तो तारीख इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पहले जो वाकयात कहीं हजार साल में बर्पा होते थे आज तो चंद सालों में हो जाते हैं, जो सदियों में बर्पा होते थे चंद महीनों में हो जाते हैं। अगर आपने पहली जंगे अजीम के जमाने का आपको पता है, उस वक्त से लेके उसके बाद आज तक आप देखिए, ये 60 साल का अरसा करीबन हो गया, बल्कि उससे ज्यादा का अरसा हो गया, इसमें आप देखिए जो कौमों पे तब्दीलियां आई हैं, कितने कितने अजीम कौमें थी, उनका क्या अंजाम हुआ, क्या असर हुआ, आज देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है। मजालिम की दास्तानें पढ़ते हैं हम, सारी दुनिया में उनकी आहो पुकार जो है वो जमीन को हिला रही है, आसमान तक पहुंच रही है, कहीं कोई पनाह देने वाला नहीं नजर आ रहा था। जिसे कहा है कुरान ने कि उन्होंने छान मारा मुख्तलिफ बस्तियों को लेकिन कहीं कोई पनाह देने वाला ना मिला, हमारे तो सामने तारीख ये कुछ बता रही है सर। ये सारी चीजें गलत निजाम जिंदगी का नतीजा है, और इसमें जिनको आज ये सुपर पावर या हाई पावर्स कह रहे हैं ये भी बच नहीं सकती, इनपे तो छोटी ताकतों के मुकाबले में जब हलाकत और तबाही आएगी तो उस वो इनसे भी कहीं ज्यादा शदीद हालत के अंदर वो होगी। ये कुरान ने यहां कहा है अशद्दो मिन्हुम बत्शन, वो सुपर पावर्स थी, उनका ही अंजाम हो गया। तो सवाल तो यहां सुपर का और लोअर पावर का होता नहीं है, गलत निजाम छोटे पैमाने पे हो बड़े पैमाने पे हो वो तो अपना नतीजा उसी तरह से लाता है, और उसका नतीजा इस किस्म की तबाही होती है, फिर दुनिया में पनाह की कोई जगह नहीं मिल सकती। कहा ये जो कुछ हमने कहा है ये हम कोई तारीख का निसाब मुकर्रर मुरतब नहीं कर रहे कि तालिब इल्मों को पढ़ा दिया जाए, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन और अल्क़ा समअ वहुवा शहीद, वाह वाह, जो हम बयान कर रहे हैं इसे तारीखी दास्तानें समझ के आगे न बढ़ जाइए कि एक कहानियां थी जो हमने बयान कर दी, ये बात नहीं है। इन बयानात में, इन कहानियों में तुम्हारे लिए इबरत और मौइज़त की हजार दास्तानें छुपी हुई हैं, तुम्हारे लिए, तुम्हें इनसे इबरत हासिल करना है। लेकिन इबरत कौन हासिल करेगा? तीन चीजें कही हैं। मन काना लहू कल्बुन, पहली चीज तो ये है कि सीने में वो दिल रखता हो जो सोचने समझने का काम दे, क्योंकि उसने कहा है कि लहुम कलूबुन ला यफ़हूना बिहा, तुम देखोगे इन लोगों को कि सीने में इनके धड़कते हुए दिल तो हैं, लेकिन उनसे ये सोचने समझने का काम नहीं लेते। तो कहा पहली चीज तो ये है कि इनसे इबरत वो हासिल करेंगे जिनके सीने में सोचने समझने वाला दिल है, और वो आज खुद इन चीजों पे गौर करके एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि वाकई ही इनका अंजाम जो है गलत निजाम का ऐसी तबाही है। अपने तौर पे गौर वतन फिक्र से, खुद अपनी सोच समझ से भी इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि कुरान ने जो कहा है वो हकीकत है। अगर ऐसी सूरत नहीं है तो दूसरा अंदाज कहा है अलकसम, कि कोई दूसरा बताने वाला हो तो उसको ही गौर से सुन ले। क्या बात है, कैसे दो ग्रोह बनाए हैं कुरान ने, खुद गौर व फिक्र करने वाले और वो लोग जो खुद तो नहीं इस काबिल, उनके लिए कहा कि जो ये फिर बात कहता है उसकी बात तो सुने, और वो सुन के ये न हो कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, वह हुआ शहीद, उसकी पासबानी करें, उसकी निगरानी करें उस बात की जो कुछ वो कह रहा है, इससे इबरत वही लोग हासिल कर सकेंगे। बात शुरू उन्होंने की थी इस एतराज से जो वो कहते थे कि जब हम मरमर आ जाएंगे तो क्या उसके बाद फिर जिंदगी होगी, वो खुदा खुद पैदा कर देगा, फिर पैदा कर देगा। कहा कि इनको इसमें बड़ा ताजुब आ रहा था, वहां भी और दीगर मकामात पर भी कुरान ने यह दलील दी है। वलकद खलकना समावात वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तत अय्यामिन वमा मस्सना मिन लुगूब, पहले तो ये बात कही कि ये अजीम सिलसिला कायनात, ये तो एक इंसान के मुतल्लिक कहते हैं कि इसको पैदा हुआ कर देना, उन्होंने कभी सोचा नहीं ये मुहैयर अल-उकूल सिलसिला कायनात कितना अजीम और वसी है, यानी इसकी वसतों का तो आज की साइंस भी अंदाजा नहीं अभी लगा सकी। ये करोड़ों दर करोड़ों कायनातें तो वो इस कहकशां के अंदर आबाद हैं, जिनको हमारी शायरी ने कहकशां कहा कि जैसे घसीट घास का एक गट्ठा घसीट के ले जाए तो पीछे रास्ते पे जो निशान पड़ता है उसको कहकशां का नाम दिया ना इन्होंने। ये कहकशां जो है एक एक उसके सितारे या तारे के अंदर कायनातें पोशीदा हैं, और उसके बाद अब तो इल्म उल अफलाक इस पे पहुंचा है, दी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स किताब का नाम है जो जेम्स जीन्स ने लिखी कि और वसी होती जा रही है कायनात। वो कहा कि हमने ये कायनात जो बनाई तो बनाने के बाद अब ये जो कहा है ना कि इतने मराहल के अंदर इसको इस दर्जे पर पहुंचाया जिस पर तुम्हारे सामने ये है, ये सित्तत अय्याम के माने नहीं है कि वीक डेज में से छह दिनों में हमने इसे पैदा किया और सातवें दिन फिर हम आराम करने लग गए क्योंकि थक गए थे, ये तौरात में है ना। कुरान साथ के साथ इस किस्म के गलत अकायद की तरदीद भी किए चला जाता है। तौरात में ये है कि खुदा ने हफ्ते के छह दिनों में कायनात को पैदा किया और फिर वो थक गया तो सातवां दिन वो आराम का दिन था, और ये जो सबत इनके यहाँ सैबत होता है सैटरडे यहूदियों के यहाँ का, सातवें दिन पे काम काज बंद करते हैं ना ये, तो कहते हैं कि खुदा भी इस सातवें दिन सो गया था तो हमें भी कारोबार बंद कर देना चाहिए। तो मैंने बताया था ना कि वो ईसाई और यहूदियों का इनका आपस में तो पूछो नहीं कितना बैर था, हर चीज जो यहूदियत की होती थी ईसाइयत उसकी मुखालफत करता था, तो उन्होंने सैटरडे को रखा सबत। यानी अजीब बात है कि ये जो इंजील जिसे कहते हैं ये ईसाइयों की भी, उसमें पहला हिस्सा अहद अतीक जिसे कहते हैं वो तौरात ही है यहूदियों वाली सारी किताबें, और अगला हिस्सा जो है वो अहद जदीद वो है जिसको इंजील कहते हैं, वो दोनों को ईसाई मानते हैं, लेकिन मुखालफत की ये कैफियत कि अगर उन्होंने हफ्ते के दिन को अपने यहाँ का छुट्टी का दिन होली डे मुकद्दस दिन बनाया, उन्होंने कहा कि हम इतवार का दिन ऐसा रखेंगे, ये नहीं रखेंगे। बहरहाल तौरात ने यह कहा था कि सातवें दिन खुदा थक गया तो उसने छुट्टी की और वो जरा सो गया सुस्ताने के लिए, वमा मस्सना मिन लुगूब, हम थके नहीं थे ये पैदा करने के बाद, इसलिए ये बात नहीं कि तुम्हें हम पैदा नहीं कर सकेंगे। और दूसरी चीज जो कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पे कही है, मैं पहले भी कई दफा सामने लाया हूँ और अभी तक तो साइंस वहां तक पहुंची भी नहीं है, ये सिलसिला एक कायनात हमारे यहाँ के शायरों ने गर्दिश अखलाक को इस माने में कुछ लिया था, जरा सा उनके जेहन में था क्या है गालिब खजानमा गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। ये गर्दिश अखलाक को इस माने में ये लोग लेते थे, लेकिन कुरान तो खैर आगे ले जाता है। खलक 45/22 खलक अल्लाह समावात वल अर्दा बिल हक वाले तुजा कुल्लो नफ्सिम बिमाग का सबर वहुम ला युज़लमून, सिलसिला कायनात इसलिए हमने पैदा किया और वो सरगर्मे गर्दिश है कि हर फर्द को उसके आमाल का नतीजा मिल जाए और किसी पे कोई जुल्म न हो। इंसान के आमाल का नतीजा मुरतब करने में इस खारजी कायनात का क्या दखल और क्या हिस्सा है। मैंने अर्ज किया कि अभी तक हमारी साइंस यहाँ तक नहीं पहुँची, साइकोलॉजी कोशिश कर रही है वो ये देखने के लिए कि इंसान के कैरेक्टर को मुरतब करने में खारजी अनासर और मामूलात का कितना बड़ा असर है। वो इस तरफ चली है अभी, लेकिन तो कदम अव्वल है, आगे चल के ये जब ये इंकशाफात होंगे तो फिर पता चलेगा कुरान क्या कह गया है कि ये सिलसिला खारजी कायनात का ये इसलिए सरगर्म अमल है कि हर फर्द को उसके अमाल का नतीजा मिल जाए और किसी पे कोई जुल्म ना हो। ये बताया है कुरान ने मकसद इस तखलीक के खारजी कायनात की तखलीक का। तो चूंकि पीछे से बात कशमकश की आ रही थी और नताइज की आ रही थी, इस ज़िमन में ये आयत भी ली जा सकती है कि खारजी कायनात को इसलिए पैदा किया गया है कि हर फर्द को उसके किए का बदला मिल जाए और किसी पे कोई जुल्म ना हो। और दूसरी बात ये कि ये पैदा करने से हम थक नहीं गए कि हम और कुछ पैदा नहीं करेंगे, हम तो पता नहीं हर रोज कितनी नई नई दुनियाएं वजूद में आती चली जा रही। खुदा भी मुझ आगे आएगा, मुसेउन है वसत पैदा एक्सपेंशन पैदा करने वाला खुदा। ये तो आज इन्होंने इस्तलाह दी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की इस्तलाह ईजाद की है, इनके जेहन में नहीं आ सकता था कि ये फैल रही है। कुरान ने 1400 साल पहले खुदा के मुतल्लक कहा था कि वो खुदा है जो फैलाने वाला है कायनातों का। एक्सपेंशन का तो कुरान के अंदर खुद तसव्वुर मौजूद है। एनी हो, कहा कि ये है कशमकश की। अब हम आखिरी आयतों के ऊपर आ जाएंगे और जैसा अंदाज है कुरान का वो सम अप करता है हमेशा आखिरी आयतों में जो कुछ पहले कहा है। रसूलल्लाह से कहा गया है कि फसबिर अला मा यकुलूना, ये जो कुछ कहते हैं वो वाकई ऐसा है कि उससे इंसान का दिल जल उठता है, जिगर कबाब हो जाता है, बड़ी तलख चीजें ये कहते हैं, तंज और तशनी इल्जामात बोहतानात इस कदर ज्यादा है कि बड़ा मुश्किल है किसी के लिए बर्दाश्त करना। लेकिन ए रसूल तुम्हें इस्तेकामत से काम लेना होगा, इन चीजों से हिम्मत नहीं हारनी होगी। आप देखिए ये मनसूबे रसालत, इसमें शुबा नहीं कि खुदा और उसके रसूल और खुदा और उसके मलाइका दुरूद तो भेजते हैं, लेकिन जिस पे भेजते हैं अंदाजा लगाइए कि उसे किन मराहल और मनाजिल में से गुजरना पड़ रहा है कि खुदा खुद तसल्लियां दे रहा है। اگرچہ وہ شاعر اور وہ جگر تو ہمت ہار بیٹھا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے. تسکین خاطر خود خدا کر رہا ہے, رسول کا دل بیٹھا نہیں جا رہا. بڑی ہمت والا دل ہوتا ہے سر جس کو اس منصب کے لیے منتخب کیا جاتا ہے, خود تسلیاں دے رہا ہے خدا کے وصبر علی ما یقولون. آگے اس کے کچھ آیتیں آتی ہیں, وہ میرا خیال ہے آج ان کی وضاحت ضروری ہو جائے گی. وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے, تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے, اور رات کے وقت میں بھی تسبیح کرو اس کی. اور آگے لفظ ہے ادبار السجود, جس کے معنی یا تفسیر میں بہت اختلاف ہے پایا جاتا ہے ان الفاظ میں. ان سے مراد لی جاتی ہے نماز کے اوقات جو ہمارے ہاں ہیں. میں یہ عرض کر دوں کہ متعین طور پر قرآن نے نماز کے اوقات کا خود ذکر نہیں کیا. قرآن نے جیسے ہم یہ نا صبح کی نماز فلاں وقت پہ, ظہر کی, عصر کی, عشاء کی, مغرب کی, عشاء کی, اس انداز سے کم از کم مجھے قرآن کریم سے متعین طور پر ان اوقات کے متعلق نہیں ملا. یہ اس قسم کے جو قرآن کی آیتیں آتی ہیں سبح بحمد ربک, ان سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد نماز کے اوقات ہیں. یہاں سے اور آیتوں سے یہ لے کر تو پانچ اوقات استنباطن جسے کہتے ہیں, بائی انفرنس جسے کہتے ہیں, اس طرح سے ان کو متعین کیا جاتا ہے. میں اس بحث میں ہی نہیں پڑتا, میرا انداز ہی اور ہے. ٹھیک ہے, قرآن نے متعین کیے ہیں یا استنباطن یہ متعین کیے ہیں, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین فرمائے ہیں. میرا انداز تو یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن میں تفصیل سے نہیں آئیں اور حکم ان کا آیا ہوا ہے, امت میں جس طرح سے امت ان کو جس طرح سے کر رہی ہے, جیسے مروج وہ چلے آ رہے ہیں, بشرطے کہ اس میں کوئی بات شرک کی نہ ہو, قرآن کے خلاف نہ ہو, ان کو اسی طرح سے قائم رکھنا چاہیے, ان میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے, نہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا چاہیے, نہ ان میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ ایک فرد کو یا افراد کے دو چار مجموعے کو یہ حق ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ امت ایک چیز کو جو کرتی آ رہی ہے, اور میں نے عرض کیا کہ اس میں شرک یا قرآن کے خلاف کوئی بات نہ ہو, امت جس طرح سے کن طریقوں پہ چلی آ رہی ہے, ایک فرد کو یا دو چار افراد کے مجموعے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ ان میں اختلاف پیدا کرے اپنے خیال کے مطابق؟ پہلے تو اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اس کا نتیجہ سوائے اس کے کہ افتراق اور اختلاف ہو, ایک اور فرقہ پیدا ہو جائے, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ساری امت کو تو آپ بدلنے سے رہے, آپ ان میں سے کوئی اور ٹائی ٹوٹرو جنہوں کہہ دے ہے نے, ان کو آپ لے کے الگ ایک فرقہ اور پیدا کر دیں گے, اور فرقہ بندی کو تو قرآن شرک کہتا ہے, تو آپ تو شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ ہمارے ہاں میں ذکر کیا کرتا ہوں, وہ ایک فرقہ بن گیا, انہوں نے یہ اہل قرآن جن کو کہتے ہیں, انہوں نے یہ کچھ کہا کہ نہیں یہ جو چیزیں امت میں چلی آ رہی ہیں پانچ نمازیں جو ہیں نہیں یہ نہیں ہیں, ہم نے معلوم کر دیا ہے قرآن کریم سے تین وقت کی نمازیں. آپ نے بار بار جگہ جگہ محراب و ممبر سے سنا ہوگا کہ پرویزی فرقہ ہے, ایک پرویز صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں تین نمازیں اور نو دن کے روزے, سنا ہوگا ہر ایک جگہ. اور سب سے پہلے جس نے مخالفت کی تھی اس تین نمازوں کی اہل قرآن کی, وہ پرویز تھا. تیس سال سے یہاں مسلسل مخالفت کر رہا ہوں ان کی, اہل قرآن کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں مضمون ہی نہیں, میرا پیمفلٹ ہے ہزاروں کی تعداد میں اس ملک کے اندر تقسیم ہوا ہے, جس میں کہا ہوا ہے کہ یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے ان لوگوں کو, کہ امت کے ایک متواتر مسلک کے خلاف اٹھ کے یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ پانچ نہیں تین ہے، میں نے ان تین کی مخالفت اس طرح سے کی ہوئی ہے اور کہا یہ رہا ہے کہ اس سے ایک فرقہ نیا پیدا کر دو، پھر چنانچہ وہ فرقہ پیدا ہو گیا، وہ ایک چھوٹی سی مسجد لیے ہوئے کہیں اسلام آباد میں، وہ وہاں پتہ نہیں پانچ وہاں بیٹھے ہوئے وہ چند آدمی ہیں، وہ اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ ہاں صاحب تین نمازیں ہم نے قرآن سے موجود کر لی، اور زکات کا بھی اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے قرآن سے معلوم کر لی، امت کو تو معلوم نہیں. وہ چند آدمی ایک لے کے وہ تین نمازیں پڑھنے والے جو ہیں وہاں وہ دن کو بیٹھ گئے، ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھ گئے، پہلے ہی کم نہیں تھے ایک اور کا اضافہ ہو گیا. اب ان میں بھی جو اہل قرآن ہیں جو کہتے ہیں ہم نے قرآن سے یہ ثابت کیا، سب سے پہلے اہل قرآن ان کے مولانا عبداللہ چکرالوی تھے جو بانی تھے اس تصور کے کہ یہ چیزیں قرآن میں ہیں، انہوں نے قرآن سے پانچ نمازیں ثابت کی. یہ دوسرے اٹھے یہ تین والے ہو گئے. انہی میں کہ اہل قرآن میں سے ایک مولوی تھے گجراوالے والے، انہوں نے کہا نہیں دو ہیں. ایک اور ان میں سے اٹھے غالباً وہ سیالکوٹ تھے، تو انہوں نے کہا ایک ہی نماز ہے. میں نے کہا شکر ہے کہ اور نہیں کہ اٹھا نہیں، تو وہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں نماز، یعنی ایک تو اگے ایو ہی ہونا سی نا. یعنی دعویٰ ان میں سے ہر ایک کا یہ ہے کہ ہم قرآن سے قرآن نماز کے اوقات ثابت کر رہے ہیں، پانچ تین دو ایک قرآن سے ثابت ہو رہا. اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کو تو رہنے دو، محسوس اپنا خیال جو ہو کہ میرے خیال میں یہ ہے تو وہ تمہارا خیال ہے، اور اگر یہ تم کہو کہ صاحب قرآن سے پانچ بھی ثابت ہیں، قرآن سے تین بھی ثابت ہیں، قرآن سے دو بھی ثابت ہیں، قرآن سے ایک بھی ثابت ہے، تو اچھا قرآن ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اور اختلاف بھی اتنے بڑے اہم معاملے میں نماز کے اوقات میں، اور ان میں اتنا اختلاف ایک ہی دور کے اندر اہل قرآن دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں اور قرآن سے وہ وقت ثابت نہیں کر سکتے کہ کتنے ہیں. اور میں نے کہا خدا کے لیے اس کو تو معاف کر دو، بخش دو، اپنے آپ پہ رکھو کہ ہمارا خیال یہ ہے اور بات کہتے ہیں قرآن سے یہ ثابت ہے صاحب. تو میں نے عزیزان من ان کی مخالفت کی، ان مولوی صاحبان نے ان میں سے ان کی کوئی مخالفت کبھی نہیں کی. جب بھی یہ کہیں گے تین نمازیں کہیں گے پرویز صاحب تین نمازیں کہتا تھا، دیانت ہی اٹھ گئی اس دور کے اندر صاحب. اور تو بیٹھا ہوا ہے پرویز، تاریخیں اس کی موجود ہیں، تیس سال سے ان کی مخالفت کر رہا ہے تین نمازیں کہنے والوں کی. کبھی نہیں کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اہل قرآن جو تین نمازیں کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ پرویزی فرقہ ہے وہ تین نمازیں کہتے ہیں. سر علم و دیانت کی تو یہ کیفیت ہو گئی. بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ میں قرآن کریم کے ان مقامات کے اندر میں بحث میں نہیں پڑھتا. میرا مسلک یہ ہے کہ یہ امت میں یہ پانچ چلی آ رہی ہیں، قرآن نے ثابت کیا، یہ حضور نے ان کو قائم کیا، امت نے ان کو اپنے ہاں تواتر سے ثابت کیا یا چلی آ رہی ہے اس مسلک کے اوپر. مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے میں ان میں اختلاف کروں، کیونکہ قرآن سے کوئی قرآن سے خلاف بات نہیں ہے. پانچ جو میں اسی کا قائل ہوں، توفیق خدا دیتا ہے تو وہی پانچ ہی ہیں جو پڑھتا ہوں. تاکید اسی کی کرتا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف نہ کرنا اپنے ہاں کے لوگوں کو. تیس سال سے لکھتا چلا آ رہا ہوں، تین کہنے والوں کی مخالفت کیے چلتا آ رہا ہوں، لیکن وہ تین اہل قرآن کے متعلق یہ کوئی نہیں کہتے گے. ہر مولوی محراب و ممبر سے اٹھ کے یہ پرویز یہ کہتا ہے تین نمازیں پڑھو، جو سب سے زیادہ مخالفت کرتا ہے. دیانتی کوئی انتہا ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان آیات سے بہرحال یہ حضرات استنباطاً یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو ہے سبے بے حمد ربے کا تسبیح کر اپنے رب کی کہ حمد کی ان اوقات میں، وہ کہتے ہیں اس سے نماز مراد ہے. سر بارہ استنباط ہے ان کا. میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تو سبح کے معنی تسبیح کرنا جو ہے یہ معنی ہی نہیں لیتا. قرآن کے روح سے سبحا کے تو معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول میں سرگرداں رہنا، सरतोड़ कोशिश करना, बगटुट घोड़े की तरह दौड़ते हुए चले जाना। वो तैराक जो पूरे हाथों से तैरता है उसके लिए ये लफ्ज आता है। इसके माने होता है पूरी पूरी कुव्वत हासिल, कुव्वत सर्व करके कोई मकसद हासिल करना, ये होता है सभा के माने। तो मेरे मफहूम के एतबार से तो ये है कि खुदा के निजाम रबूबियत को वजह हमदो सताइश बनाने के लिए हर वक्त मसरूफ कार रहा हूं, सुबह शाम रात को। लेकिन अगर इनसे नमाज के औकात का इस्तेमाल होता है तो बिस्मिल्लाह, मुझे बास में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो पांच मानता हूं पहले से ही और उनका कायल हूं, उनपे कायम हूं। लेकिन ये जो मैंने अर्ज किया है कि यहाँ नमाज नहीं बल्कि ये जो है कि लगातार सर तोड़ कोशिश किए जाओ इस निजाम को, पहले है वस्बे अलामा यकूलूना, इस्तकामत से काम लो, हिम्मत से काम लो, बर्दाश्त से काम लो। तो पहले तकीद की गई है, फिर ये कहा है कि हर दम कोशिश करते चले जाओ, हर घर में अमल रहो इस निजाम खुदावंदी को वजह हमदो सताइश बनाने के लिए, हर तौर कोशिश करो। और आगे फिर है कि इसकी मुखालफत बड़ी होगी सर, और मुखालफत हुई। 13 साल मदीने की जिंदगी के बाद, मक्के की जिंदगी के बाद हजूर मदीने तशरीफ ले आए। अब इन कुरैश को कोई वजह मुखालफत होनी नहीं चाहिए थी, वो तो चले गए। वो आज का मक्का और मदीना नहीं है कि 2 घंटे में या 3 घंटे में आप वहां पहुंच जाए, और हवाई जहाज में अगर जाना हो तो 4-4.5 घंटे में पहुंच जाए। उस जमाने का मक्का और मदीने के दरमियान के फासले 300-300 मील के, ऊंटों के ऊपर सफर करने का, सहराओं के अंदर ये आने का, कोई मुखालफत नहीं कुरैश की हो रही, किसी किस्म का उनको डर नहीं है। लेकिन वहां से बार बार उठ के चले आ रहे हैं, 7 साल तक आए मुख्तलिफ गज़बात के अंदर। सोचिए कि क्या मामला था, ये जबरदस्ती इनको इस्लाम के ऊपर तो मजबूर नहीं किया जा रहा था। इनके जो कहते थे जी हमारे बुतों को गालियां देते हैं, ये तो चले ही आ रहे थे वहां से, तो गाली कहां ले ली थी आप? यानी उनके साथ मामला ही कोई नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद, और वो इसीलिए था, आज भी जो ये हो रहा है दुनिया की सुपर पावर जो कर रही है कि हो ना जाए आशकारा शरे पैगंबर कहीं नहीं। उनको पता है कि शरे पैगंबर अगर दुनिया में आशकारा हो गई, ना निजाम मलूकियत बाकी रहेगा, ना निजाम सरमायादारी, ना निजाम पेशवाइयत बाकी रहेगा। इस वक्त भी दुनिया भर की ये सारी कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि ये मुसलमानों का शऊर बेदार ना कहीं हो जाए दीन के लिए, मजहब में इनको गुम कर रखो। ठीक है, जितनी जी चाहे नमाजें पढ़े, रोजे रखें, ये दगात दें, ये हज करते रहें, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन दीने पैगंबर जो है वो उसका शऊर इनके अंदर ना कहीं बेदार हो जाए, फिर किसी कुव्वत का कुछ बाकी नहीं रह सकता। ये थी जो कुरैश के लिए वजह मुखासमत थी, और यही आज वजह मुखासमत है। मुसलमान कुव्वतें मुमलकतें बेचारी इस काबिल है ही नहीं कि वो इनका मुकाबला करें। लेकिन इनको हर वक्त ये खौफ खाया जा रहा है कि इनके अंदर ये शऊर बेदार ना कहीं हो जाए। ये है चीज जिसके लिए वो कुरैश मक्का 7 साल तक, ना आके वहां खुद मक्के में उनको शिकस्त नहीं हो गई, लगे ही रहे इसके पीछे, चैन से एक दिन नहीं बैठने दिया। इसीलिए उसके लिए कहा कि याद रखो वक्त वो आ गया है, गालबन ये पहली जंग के जमाने का सिक्की की आयात होंगी। वस्तमे यौमा युनादिल मुनादे में मकामिन करीब, माने तो ये है कि कान लगा के सुनो उस आवाज को जो करीब आवाज करके करीब मकाम से ही आ जाएगी तुम्हारे कानों में। तो वो आवाज तो जंग का ऐलान ही था जो आई आवाज कानों में। पहली लड़ाई बदर के मकाम के ऊपर आई, थोड़े से फासले के ऊपर मक्के के। ये तो बाहर से निकल के मदीने से इन्होंने तो वहां जाके मुदाफियत कर ली, वरना वो तो बढ़ के आ गए हुए थे। जंग की मुनादियां, जंग की आवाजें तो कानों के अंदर आ रही थी। सुनो करीब के मकाम से ही ये अब ये आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। यौमा यस्माउन सहत बिल हक ज़ालिक यौमुल खुरूज, जिस दिन वो चीखो पुकार जो होगी जंग के लिए, वो बड़े जोर शोर से उठेगी और फिर वो दिन होगा जिस दिन फिर तुम्हें निकलना पड़ेगा उनकी मुखालफत के लिए। आमतौर पे इन आयात के लिए वो जो मरने के बाद की जिंदगी है उसके मुतल्लिक कहा जाता है। मैंने बार बार कहा कि वो तो हमारे लिए ईमान है, जुज़्वे ईमान नहीं, बुनियाद है ईमान की आखिरत पर ईमान, वो भी सही है, लेकिन हर चीज कुरान की आखिरत के मुतल्लिक ही नहीं है, इस दुनिया के मुतल्लिक। ये तो तारीख बयान की जा रही है, वस्बिर अला मा यकूलून, कि हिम्मत से इस्तेकामत से बर्दाश्त से काम लो ऐ नबी। और बर्दाश्त के ये मकामात थे कि ये एक मुख्तसर सी पनाह गज़ीनों की जमात मदीने में आके बेचारे किसी तरह से इत्मीनान से चार दिन बैठे और वहां भी उन्होंने चैन नहीं लेने दिया, यूरिश करके चले आ रहे हैं। कहा लेकिन कोई बात नहीं, ज़ालिका यौमुल खुरूज, निकलना पड़ेगा इसके लिए तो। लेकिन वहां मैदान जंग में इन्ना नहनु नुही व नुमीतु व इन्ना इलैनल मसीर, फतह और शिकस्त, जिंदगी और मौत जो कौम की है उसका फैसला हमारे कानून के मुताबिक होगा, खौफ न करो। तमाम मामलात हमारी तरफ लौटते हैं, हमारा कानून फैसला करता है। ये खुदा का कानून ही था ना कि ये हक के ऊपर जो जमात थी बेसरो सामान, तादाद के एतबार से इतनी कम, जैसा मैंने अर्ज किया है बिल्कुल पनाह गजीनों की एक महाजरीन की जमात, उनके पास तो तलवारें भी पूरी नहीं थी जो लड़ने के लिए गए हैं, तो इसके बावजूद जो शिकस्त हुई है कुरैश को अंदाजा लगाइए। उन्होंने मक्के में आके ये फैसला का ऐलान कर दिया था कि कोई रोए नहीं अपने मरने वालों के ऊपर कि इससे हमारे दिल बैठ जाएंगे, रोने तक के लिए ममानियत कर दी थी, इतनी बड़ी शिकस्त थी ये। इलैन अल मसीह यौमा तशक्कुल अर्दु अनहुम सिरान, वो दिन जब तुम देखोगे जमीन इनके आगे से फिसलती चली जाएगी, बढ़ नहीं सकेंगे। बड़े हसीन अल्फाज हैं ये साहब, बड़ी तेजी से जमीन फिसलती जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, एक कदम ये बदर के मैदान से आगे नहीं बढ़ सके, पहली जंग में और किसी जंग में नहीं बढ़ सके। ठीक है, मैदान में दो एक ऐसे गज़वात भी थे जिनमें वक्ती तौर पर कुछ शिकस्त भी हुई, कुछ इंतशार भी पैदा हुआ, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए वो था, फिर संभल गए, ये संभलने के बाद फिर खड़े हो गए, और इस तमाम दौरान में किसी एक जंग में भी इन्हें शिकस्त नहीं हुई उनके हाथों से। अजीब बात है, हालांकि अगर दोनों फौजों का मुकाबला किया जाता तो मुकाबले में ये कुछ शय ही नहीं थे उनके मुकाबले में। और फिर वो जो जंगे आजाब जिनको कुरान ने कहा है उसमें तो ये सारे कबीले इकट्ठे हो गए थे मुखालफत के लिए, जितने मुखालफीन थे एक हजूम करके महाज बनाकर आ गए थे उसके मुकाबले के लिए। वो भी जंग, वो जंगे खंदक जिसे कहते हैं, इतनी जंग के मदीने के गिर्द खंदक खोदनी पड़ी, वहां भी शिकस्त नहीं हुई इस फौज को। खुदा ने जो वादा किया था कि ये हम वादा करते हैं कि हम और हमारे रसूल गालिब रहेंगे, मोमिनों के ऊपर गैर मुस्लिम कभी फतह नहीं हासिल कर सकते, कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे, गलबा नहीं हासिल कर सकेंगे, ये वादे थे खुदा के और ये हर जंग में पूरे हुए। तो कहा कि जिस दिन जमीन इनके सामने से खुद बहुत फिसलती चली जा रही जाएगी और ये आगे नहीं बढ़ गए, जाले का हश्रुन अलैना ये यसीर, ये जो जमा करना है इस तरह से इन फौजों को, कुछ मुश्किल नहीं हमारे लिए, एक दूसरे के सामने ये फौजें आ जाएंगी, और डरने की बात नहीं है, हिम्मत से काम दो, कामयाबी तुम्हारे ही लिए है। नहनु आलमु बिमा यकूलूना, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या कहते हैं तुम्हारे मुतल्लिक, इन हालात में वो जो कहते होंगे तो यही बात होगी कि हम तो नेस्त तो नबूद कर देंगे माज अल्लाह इनको, ये शय किए हैं मुट्ठी भर जमात जो है ये जाके वहां बैठी हुई, इस दफा ऐसा हमला करेंगे कि याद आ जाएगा इनको, और पता नहीं किस किस किस्म की बात है। कहा हम जानते हैं, आप दिल बर्दाश्ता ना हो जाइए, क्या बात है, तसल्लियां दी जा रही हैं खुदा की तरफ से। अगली बात है, वमानता अलैहिम बे जब्बारिन, और इस सारा फलसफा इस्लाम के जंगों का बयान कर दिया एक ने, ये तुम्हारे खिलाफ ये कुछ कह रहे हैं। और वाकया ये है कि तुम जबरन इनको मुसलमान नहीं बना रहे, जबर नहीं इन पे कर रहे किसी किस्म का, जबरन तो तुम जंग में नहीं कर रहे इनको, सवाए एक के जहां फतेह मक्के के लिए जाना पड़ा था कि उन्होंने इनको इसी तरह से वापस भेज दिया था, तो सारी जंगें इसी अतराफ में आके हुई है, वही हमलावर होते रहे हैं। और फिर तलवार के जोर से इस्लाम का फैलाना, ये तो बहुत बड़ा इस्लाम के खिलाफ इत्तेहाम है। लाइक रहा फिर दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती, कुरान तो जैसा मैंने आपको बताया है वो तो उन अराब को बद्दुओं को कहता है जो मुसलमान हो चुके थे कि ये मत कहो कि हम मोमिन हो गए हैं, अभी ईमान तुम्हारे दिल की गहराइयों में नहीं उतरा, मोमिन न कहो, कहो कि हमने अपने आप को झुका दिया है इस ममलकत के सामने। वो तो इन्हें भी नहीं मोमिन को मानता, वो तो हम पैदाइशी मुसलमानों से कहता है या अय्युहल लजीना आमनू आमनू, तुम भी ईमान लाओ, जबर ईमान के मामले दो मुतजाद चीजें हैं, ईमान तो अमन है, ये जबर में अमन कहाँ होता है, इसका तो मादा ही अमन है। ये तो वो कहता है मोमिनों की निशानी इलामत खसूसियत ये है कि और तो और आयात खुदाबंदी भी इनके सामने पेश की जाती हैं तो ये उनसे भी अंधे और बहरे बन के नहीं झुकते, समझ सोचने के बाद तस्लीम करते हैं आयात खुदाबंदी को। अल्लाह अकबर, तो ये बजारो इकरा शमशीर के जोर के ऊपर ये मुसलमान करते चले जाएंगे, सर सवाल ही नहीं पैदा होगा। कुरान ने तो जहां वो मौजज़ा आपसे तलब फरमा करते थे कि कोई मौजज़ा दिखाइए तो हम ईमान ले आए, कुरान ने कहा है रसूल से कि कुछ मुश्किल नहीं है हमारे लिए जो ये कहते हैं हम वो कर दिखाएं, ये तो सारी कायनात मौजज़ा है हमारा, दिखा सकते हैं, लेकिन उससे तो गोया जबरन मुसलमान बनाना हो जाएगा ना किसी को, क्योंकि अकलो फिक्र तो माउफ हो जाएगा अगर इस किस्म की कोई चीज दिखा दी गई तो। तो कुरान रसूलुल्लाह से कहता कि क्या तू चाहता है कि इनको फिर इस तरह से जबरन मुसलमान बना लिया जाए, उनको तो हम मुसलमान तस्लीम ही नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, जंग के मामले में ये कहा वमा अंता अलैहिम बिजब्बा, एक आयत एक लायत का एक लफ्ज से तय कर गया कि हजूर ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, जितनी गजवात हुए हैं हजूर की जिंदगी में या सहाबा अकबर की जिंदगी में, वो इस्लाम को बजोर शमशीर फैलाने के लिए नहीं थे, उसे मुसलमान तस्लीम ही नहीं किया जा सकता जिसे इकराहन इस ईमान पे मजबूर कर दिया जाए। यहाँ कहा जंग के मैदान में कहा है कि कामयाबी तुम्हें हासिल होगी लेकिन तुम इन पे इस्लाम के मामले में जबर नहीं कर सकोगे। कुरान में ये है कि दुश्मन का भी कोई एक शख्स अगर जंग के जमाने में तुम्हारे पास अमन ढूंढने के लिए आए तो उसको अमन पना दो, पना देने के बाद कुरान सुनाओ उसको, फिर उससे खुद पूछ लो, उसके बाद वो अगर कहे कि नहीं साहब मैं तो जाना चाहता हूं, तो कहा अपनी हिफाजत में उसे उस सरहद तक पहुंचाओ जहां फिर उसके बाद उसके अपने आप भी होते हैं। अल्लाहु अकबर, दुश्मन पनाह के लिए आया है, सिर्फ कुरान सुनाना है उस तक, फिर उस पे छोड़ दो, अगर वो नहीं मानता जाना चाहता है तो फिर उसको वहां तक खुद अपनी हिफाजत में छोड़ाओ। अजीजा ने मान इस किस्म का दीन दुनिया में इसकी मिसाल कहीं मिल सकती है। वमानता अलैहिम बिजब्बा, जबर नहीं है, कर क्या, फज़क्किर बिल्कुरान, बस ये बात है जो किए चले, कुरान की बातें इनके सामने पेश करते चले, फिर इन पे छोड़ दो कि अपनी अकलो फिक्र से ये फैसला करें कि हम इसे मानते हैं या नहीं मानते, जो मानेगा उसका भला, जो ना मानेगा नुकसान उसका होगा। تمہارا تو کوئی نقصان نہیں اس میں ہوگا. تمہارا تو معاذ اللہ کوئی کاروبار یا بزنس نہیں ہے کہ گاہک کام ہو جائیں گے. نہ ہی تم نے اس مغربی جمہوریت کے ووٹ لینے ہیں کہ کسی طرح سے بنا کے رکھو ان کے ساتھ کہ کل کو ووٹ ملے گا اس کا. سوال ہی نہیں. پیغمبر تو پہلی سانس میں جب دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے عبداللہ ایک ہی پکار ہے میری, معصومیت صرف خدا کی جائز ہے کسی انسان کی نہیں. ایک بات تو یہ ہے وما اسلکم علیہ, اور اسی سانس میں کہتا ہے کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. جب اس نے معاوضہ ہی کوئی نہیں مانگنا یا لینا ان سے تو وہ جبر کیوں کرے گا؟ وہ اپنے پارٹی بڑھائے گا, ووٹس بڑھائے گا, گاہک زیادہ پر پیسہ کرے گا. معاذ اللہ کر کیا, فذکر بالقرآن, تو تو یہ کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ پھر اس قرآن سنانے کے بعد بھی کون مانے گا اس کو؟ میں یخاف و وعید, جو اپنے غلط اعمال کے انجام سے ڈرتا ہے وہ آئے گا اس کی طرف. تیرا کام تو سنائے چلے جانا ہے, پیش کیے چلا جانا ہے, تم یہ کرو. دوسرے مقام پہ بڑا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے کہ تو ان مسافروں کو راستہ بتا سکتا ہے کہ یہ فلاں طرف جاتا ہے. تیرا کام یہ جو ہے نا ہدایت, اس کے معنی ہے کہ صحیح راستے کی طرف تو رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے. تو زبردستی اس راستے میں کسی کو چلا نہیں سکتا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی چلنا ہی نہیں چاہتا, گھر میں بیٹھا ہوا کہ نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی. یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کے چار سپاہی بھیج کے ان کو مشکے باندھ کے اس کی لے آؤ صاحب کے, نہیں ڈال دو اس کو جیب کے اندر اور لے جاؤ جہاں ہم نے لے جانا ہے. سوال ہی نہیں ہے, وہ جانا ہی نہیں چاہتا. جانے والا بھی اگر باہر نکل کے چوراہے پہ پہنچنے کے بعد راستہ اگر صحیح اس کے سامنے نہیں ہے تو یہ کہا کہ تمہیں تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس کو بتا دو کہ جدھر تم جانا چاہتے ہو صحیح راستہ یہ ہے, اس طرف جاؤ تو جاؤ. کہا تمہارا اتنا ہی فریضہ ہے, اگر اس کے باوجود وہ اس راستے پہ نہیں جاتا دوسرے پہ چلا جاتا تو کہنے لگا خسمان اٹھائے بس ہی کہنے پنجابی کی. یہ تمہاری ذمہ داری نہیں. یہاں ہمارے ہاں ہر وہ جو لمبا چوگا پہن لے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے خدائی فوجدار بن کے, کہ یہ کرا کے چھوڑوں گا میں صاحب, کیسے نہیں کرتے. یہاں کینچیاں لیے پھرا کرتے تھے, اب تو پتہ نہیں کیوں ہے یا نہیں. بڑے بوڑھوں کو تو معلوم ہوگا نارکلی کے اندر یا وہ یہ بیچاری بچیاں خواہ اسکول کالج کی چیز جاتی تھی تو انہوں نے گتا کٹ دے پھر دے ہوں دے آگے سن شریعت اسلامی کے لیے. یہ تو دل کا معاملہ ہے, یہ الگ بات ہے کہ آپ دل اور نگاہ کی قلب اور دماغ کی پوری رضامندی سے قرآن کے نظام کے صحیح ہونے پر قائل ہو جائے, اس کی صداقت پر ایمان لے آئے, یقین ہو جائے, اسے تسلیم کر لے اپنے لیے نظام زندگی, پھر اس نظام کے احکام کی اطاعت تمہارے اوپر لازم آ جائے گی. یہ بھی جبر نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو پہلے اصولاً تسلیم کر لیا نا. یہ جیسے کوئی شخص بھی جو پاکستان کا شہری بننے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر لازم آ جاتا ہے کہ مملکت کے قوانین کی اطاعت کرے, نہ کرے تو جبرن کرائی جاتی ہے اطاعت. یہ جبر نہیں ہے, اس نے پہلے اطاعت قبول کر لی ہے بطیب خاطر اپنی رضامندی سے. اگر وہ اس کے بعد نہیں چاہتا چھوڑ جائے ملک کو, چھوڑ نہیں جائے. نظام اسلامی نظام کے اندر تو اس نظام کے اندر رہنا چاہتا ہے تو اس کی اطاعت کرنی ہوگی. کسی وقت بھی اگر وہ یہ دیکھے کہ نہیں صاحب میں نہیں رہنا چاہتا اس میں, میں نے نہیں پوکھتا ہے, چھوڑ دے. اقلیتیں غیر مسلم بھی تو اس مملکت میں بسیں گی نا, ان میں جلا جا ان کے قوانین اس کے اوپر لاگو ہو جائیں, کوئی زبردستی نہیں. लेकिन यहां तो साहब पूछो नहीं, जबरदस्ती की यह कैफियत कि इस्लाम लाया तो जा सकता, मुसलमान हुआ तो जा सकता है रजामंदी से, मुसलमान होने के बाद इसे छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ोगे तो मुर्ताद हो गए, मुर्ताद की सजा मौत है। इससे ज्यादा जबर क्या हो सकता है जी, यानी उसका दिल नहीं ठोकता, उसका दिल नहीं मानता इसके लिए, ठीक है बदबख्त है, अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन नहीं उसे कहना कि दिल तुम्हारा माने या ना माने तुम्हें तो रहना पड़ेगा, अगर तुमने इसे छोड़ा तो कत्ल कर दिए जाओगे। तो मौत के डर से अगर फिर वो मुसलमान की शक्ल में रहेगा तो इससे बड़ा मुनाफिक कौन होगा। तो आप तो मुनाफिकों की एक कौम तैयार कर रहे हैं अपने अंदर, कि दिल मानता नहीं है, मौत के डर से वो आपके साथ रहते हैं। तो जो इस किस्म के साथ रहने वाले होंगे फिर सोचिए ना वो क्या कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कुरान करीम ने जो बार बार ये कहा है, मानता अलैहिम बिजबार, जबर नहीं, इकरा नहीं, मैदान जंग में कहा जा रहा है कि जबर नहीं है, यहां तो कैदी आने हैं, गिरफ्तार होंगे, हुए जंग के कैदियों में से भी किसी एक को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया गया। ये असूल भी निजाम सियासत में या जंग के निजाम में कुरान ही के यहां से आपको मिलेगा कि जब जंग के कैदी तुम्हारे पास आए तो उन्हें अपने कैदियों के बदले में रहा कर दो या उनका कोई फिदिया लेके उनको रहा कर दो, और अगर ऐसी सूरत ना हो, तुम्हारे उधर कैदी भी ना हो और इनका वो फिदिया भी, इल्ला मन्नन औ एहसान, तो फिर एहसानन इनको रहा कर दो। और आपके यहाँ की फिका का जो मजहब है वो कहता है कि ये इन सब को गिरफ्तार करो, मर्दों को गुलाम बनाओ, औरतों को अपने यहाँ लौंडियां बनाओ, उन्हें सिपाहियों में तकसीम करो, बिला निकाह के बिला तादाद के जितनी भी हों वो इनसे जिनसी तमत्तो करें, फिर वो बेच सकते हैं इनको, सहायत में दे सकते हैं दोस्तों को। ये जंग के कैदी अंदाजा लगाइए कि वो उनमें से किस किस किस्म के कोई शरीफ इंसान, शराफत माब औरतें भी होगी। ये एक शहर है, इस पे गलबा पा गए, उस सारे शहर की आबादी आपके यहाँ की गिरफ्तार हो गई, कैदी हो गए वो, या जंग के कैदी हो गए, तो उनके यहाँ की मर्दों को गुलाम बनाओ, औरतों को लौंडियों बनाओ, लौंडियों को फिर ये कुछ करो। आज आपके यहाँ की तफसीरों में ये लिखा हुआ है, ये यूएनओ जो है उसके चार्टर में जो जिनमें अक्सरियत गैर मुस्लिम ममालक की है, उन्होंने तो एक अरसा हुआ अपने चार्टर में स्लेवरी को उन्होंने ममनू करार दिया, गुलामी को। बाद में तो इन्होंने भी मजबूर करना पड़ा, वरना वो जो उनका चार्टर था उसके ऊपर हिजाज की ममलकत ने दस्तखत नहीं किए थे कि हमारी शरीयत से खिलाफ है ये, हमारे यहाँ गुलामी जायज है। अब जो सारी दुनिया ने उसके ऊपर अमल किया है तो कुछ अर्सा हुआ इन्होंने भी दहाज, लेकिन इनके यहाँ अभी तक वो फिका का मसला वही कि जंग के कैदियों को गुलाम बनाओ, उनकी औरतों को लौंडियों बनाओ। और वो कुरान कह रहा है वो मानता अलैहिम बिजब्बार, तुम इन पर किसी किस्म का जबर कर नहीं सके। करना क्या है अजीजा ने मन, बात तो सारी ये है, फज़क्किर बिल कुरान, कुरान की बात समझाओ इन्हें। और कितनी खुद एतमादी है कुरान वाले खुदा को कि कुरान की बात अगर समझाई जाए और वाकई उसने दिल के कानों से सुन लिया और ये चीज उसकी समझ में आ गई कि गलत रास्ते पर चलने का नतीजा क्या होगा, फिर वो कुरान को छोड़ के कहीं और जा नहीं सकता। वक्त हो गया सूरह काफ आज इख्तिताम पर पहुंच गई, आइंदा दर्स में हम अगली सूरत अज़्ज़ारियात लेंगे 51 51 सूरत। ربنا تقبل منا انك انت السميع.